सभी लोग हाथ जोड़े मंगलमय मंगलाचरण करके उपदेश सुनना है। ओम नमः सिद्धेभ्यः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। पंच परमेश्वर भगवान की अहिंसा परमो धर्म की पंचकलात्मक कल्याणक महामहोत्सव की आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की अहिंसा परमो धर्म की जब किसी महान आत्मा का सर्वभौविक जीव कल्याण हेतु इस धरती पर जन्म होता है तो उसकी चर्चा 6 महीने से पूर्व ही यहाँ धरती पर ही नहीं बल्कि 3 लोक में चलने लगती है। नरक में भी एक क्षण के लिए शांति का वातावरण बन जाता है, केवल एक क्षण के लिए, ज्यादा समय के लिए नहीं। 6 महीने पूर्व नरक में भी शांति का वातावरण क्यों छा जाता है तो उसका कारण यही है कि जो महान आत्मा यहाँ पर जन्म लेने वाला है वह 3 लोक की कल्याण की भावना बहा करके तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर चुका है और उसी का प्रभाव है। यह पुण्य प्रकृति यह पुण्य कर्म एक ऐसा कर्म है सारे पुण्य प्रकृतियों में सबसे ज्यादा उत्कृष्ट और वजनदार अगर कोई पुण्य होता है तो वह तीर्थंकर प्रकृति नामक पुण्य कर्म होता है। इसके बराबरी कोई भी अन्य पुण्य नहीं कर सकता है और यह उसी व्यक्ति के पास होता है, उसी भव्य जीवात्मा के पास यह पुण्य प्रकृति होती है जो भवों से कई भवों की साधना चलती है, कई भावों में त्याग और तपस्या के माध्यम से जीव कल्याण की भावना भाते भाते चले आते हैं और अंत में जाकर के जिस भाव से इस पुण्य प्रकृति का बंद करना होता है उस समय षोड़श कारण भावनाओं की भावना भाता हुआ वह पुण्यात्मा 16 कारण भावनाओं में से प्रमुख भावना जो प्रथम भावना कहलाती है दर्शन विशुद्धि। दर्शन विशुद्धि भावना के साथ साथ एक भावना अन्य 15 में से कोई भी एक साथ जोड़ करके इस तीर्थंकर नामक महान पुण्य कर्म का बंद करना प्रारंभ कर देता है। और यह पुण्य प्रकृति जब बंद को प्राप्त होता है तो केवल एक बार हुआ और रुका, ऐसा नहीं, यह पुण्य प्रकृति एक बार बंद होने लग जाए तो रुकता नहीं, तब तक नहीं रुकता जब तक कि वे तीर्थंकर पर्याय को प्राप्त नहीं करेंगे। प्राप्त करने से पूर्व वह अंतर मुहूर्त पहले तक तीर्थंकर प्रकृति का बंध निरंतर करता है। एक घटना, इस तीर्थंकर प्रकृति को बंद करने वाले उस राजा की घटना शास्त्रों में पढ़ने को मिलती है जिनको राजा श्रेणिक बताया है। सुना है ना नाम राजा श्रेणिक का? राजा श्रेणिक आज वह आत्मा तीर्थंकर प्रकृति को बंद करने के पश्चात भी कहां है? नरक में। कौन से नरक में? पहले नरक में। नरक होते कितने हैं? सात। सात नरक होते हैं और प्रत्येक नरक के संबंध में जब हम विचार करते हैं कि नीचे नीचे नरकों में जैसे जैसे नीचे नीचे चले जाते हैं, पहले नरक से ज्यादा आयु दूसरे नरक में, दूसरे नरक से अधिक आयु तीसरे नरक में, और ऐसे आयु बढ़ती चली जाती है, बढ़ती बढ़ती आयु सातवें नरक में 22 सागरूपम की आयु होती है। सागरूपम बहुत बड़ा होता है जिसमें वर्षों की गिनना नहीं की जा सकती, गणना नहीं की जा सकती, जिसको असंख्यात कहा जा सकता है। असंख्यात वर्षों का एक पल्ल्य होता है, पल्ल्यों को भी असंख्यात बनाए या कोटा कोटी में बनाए तो वह एक सागर प्रमाण होता। आयु बहुत लंबी होती है नरक में, और ऐसे नरकों में भी तीर्थंकर बनने वाले जीवों का जन्म होता है, ये बहुत बड़ी विशेषता है। तिरंश गति में वे जीव नहीं मिलेंगे जो तीर्थंकर बनने के लिए आ सकते हो। नरक गति से आकर के कोई भी आज तक तीर्थंकर नहीं बना। मनुष्य गति से मृत्यु को प्राप्त होकर के मनुष्य बन करके मनुष्य गति में तीर्थंकर प्रकृति का उदय को प्राप्त करके तीर्थंकर नहीं बना। दो गति से नहीं आते तीर्थंकर बनने वाले जीव। किस किस गति से? एक तिरंश गति और एक मनुष्य गति। मनुष्य गति में आने के पश्चात तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके उसी भव से मोक्ष जाना संभव है, पर यदि परभवों में यदि मोक्ष प्राप्त करना है तो मनुष्य गति में तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके दो गति में नियम से जाएगा वह जीव, एक देवगति और एक नरक गति। आदिनाथ भगवान का जीव अनादि अनंत काल से इसी संसार में था। वह भी जन्म मरण के दुख को 84 लाख योनियों में भटकते भटकते अनुभव किया था। दुख की अनुभूति अनादि काल से हो रही थी, लेकिन समय आया। भव्य जीव है तो एक न एक बार समय आता ही है भव्य जीव में, क्योंकि मोक्ष प्राप्त करने की क्षमता, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रादि रत्नत्रय को प्राप्त करने की क्षमता होती है, इसलिए उसका नाम सार्थक होता है भव्य जीव। भव्य का मतलब जिनके पास सम्यक दर्शन ज्ञान आदि को प्राप्त करके, चारित्रादि को प्राप्त करके निर्वाण प्राप्त करने की क्षमता होती है उसको भव्य कहते हैं, और यही क्षमता जिस जीव के पास नहीं होती है उसका नाम है अभव्य। पर यह भी ध्यान में रखना है कि अभव्य जीव कभी भव्य नहीं बन सकता, क्योंकि वह नैसर्गिक प्रकृति है आत्मा की। इसको भगवंतों ने पारिणामिक भाव कहा है। पारिणामिक भाव का मतलब आत्मा के स्वयं के प्रकृति से उत्पन्न होने वाले भाव। इन भावों की उत्पत्ति में कोई कर्म या कोई अन्य कोई निमित्त नहीं होता है, निसर्ग से ही। जो मोक्ष न जा सके, ऐसी योग्यता पड़ी हुई है जिस जीव के पास, उस जीव को अभव्य कहते हैं, और जिस जीव के पास यह नैसर्गिकता से ही योग्यता है, क्षमता है कि वह सम्यक दर्शन आदि प्राप्त कर सकता है, तो उस जीव को भव्य कहते हैं। आज पहले नरक में वह राजा जाकर के जन्म लेता है, महावीर भगवान के काल में, महावीर भगवान के समोशरण में, प्रथम श्रोता के रूप में, समोशरण में प्रथम श्रोता, और वो आज कहाँ है? नरक में। और क्या बनने वाला? भविष्य में आकर के तीर्थंकर बनने वाला। तीर्थंकर बनने की योग्यता, जुटाने की क्षमता जिसके पास हो, ऐसा राजा भव्यात्मा है, भव्य जीव है, महान आत्मा है, इसके पश्चात में ऐसा कौन सा अपराध हुआ जिससे कि वो आज नरक में वो पड़ता है? जीवात्मा के पास महान कार्य करने की क्षमता भी यदि होती है तो उतना ही बुरे कार्य करने की भी क्षमता होती है, प्रत्येक के पास होती है। उसका यदि सदुपयोग होता है तो अच्छा बनता है, दुरुपयोग होता है तो बुरा भी बन सकता है। और अच्छा बुरा बनना और ऐसे इस प्रकार के परिणाम आदि होना, ये सब अपने ऊपर डिपेंड नहीं, हमारा पुरुषार्थ जब ढीला पड़ जाता है तो कर्मों का बंद होना और कर्मों का उदय पाकर उसका फल भोगना, ये अपने माध्यम से ही होता है। हमारे जीवन के जितने भी सुख और दुख की घटनाएं सामने आती हैं, वो सब कर्म की देन है, कोई ईश्वर की देन नहीं, कोई देवी देवता की भी देन नहीं, कोई विशेष आत्मा शक्तिशाली कोई बैठा हो और उसके माध्यम से ही ये सब कुछ होते हो, ऐसी भी बात नहीं है। हमारे जीवन में सुख आया तो समझ लेना ये पुण्य कर्म का उदय चल रहा है, इसलिए हम आज सुखी हैं। और दुख आया है तो उससे ये समझ लेना है कि आज हम पाप कर्म के उदय से गुजर रहे हैं, इसलिए मेरे सामने इतने सारे दुख संकट आए हुए हैं। संसार में जितने भी प्राणी हैं कर्मों के बंध से बंधे हुए हैं, उनका फल निरंतर भोगते रहते हैं, उनके उदय में वे सुख दुख की अनुभूति भी करते हैं, और अज्ञानी हो तो पुनः पाप कर्मों का बंद करके संकटों का आवाहन करते हैं, संकटों का स्वागत करते हैं। संसारी प्राणी को कर्म बंद तो एक क्षण के लिए भी नहीं रुकता। भगवान ने बताया है, अपन सभी प्रत्येक समय आठ कर्म में से एक कर्म को छोड़कर निरंतर कर्मों का बंद करते रहते हैं और कर रहे हैं। महाराज क्या इस समय भी हम बंद कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, इस समय में भी सात प्रकार के कर्म बंद हमारे लिए निरंतर हो रहे हैं। और किसी का बंद मंद हो या तीव्र हो ये बात अलग है, शुभ परिणामों के काल में भी अशुभ कर्मों का बंद होता है और अशुभ परिणामों के काल में भी शुभ कर्मों का बंद होता है। परिणामों की सूक्ष्मता बहुत बड़ी है। एक कर्म सिद्धांत में जब चर्चा होती है, बात सामने आती है कि अशुभ भाव है और शुभ कर्म का बंद कैसे हो रहा है, होता है। अशुभ लेशा है तो अशुभ परिणाम है, और अशुभ परिणाम के काल में कषाय जब मंद पड़ती है तो परिणामों में थोड़ी सी उज्ज्वलता आती है, उस उज्ज्वलता के कारण से अशुभ लेशा होते हुए भी, अशुभ परिणाम होते हुए भी पुण्य कर्म का बंद कर सकता है। और ऐसे पुण्य प्रकृति को बंद करने वाले जीव निबोध में भी पाए जाते हैं। भगवान ने बताया है, निबोध से कोई जीव मृत्यु को प्राप्त होकर के मनुष्य गति में आता है तो वह अशुभ लेशा के साथ ही मरण करता है, अशुभ लेशा के साथ कषाय की मंदता हो जाती है और मंद कषाय के काल में मनुष्य प्रकृति का बंद पड़ जाता है, मनुष्यायु का बंद पड़ जाता है, मनुष्य गति में चला आता है। लोग पूछते हैं प्रायः इस संबंध में, निबोध में रहने वाला निबोधी जीव एकेंद्री है, अशुभ लेशा है, अशुभ परिणाम होते हैं निरंतर, ये होते हुए भी वे किस प्रकार से मनुष्य गति में आता है? क्योंकि मनुष्य गति, मनुष्यायु और मनुष्य गत्यानुपूर्वी, इनको तो पुण्य प्रकृति कहाँ है और यह पुण्य प्रकृति बंधने के लिए अवसर कब प्राप्त हुआ, कब शुभ परिणाम हुए, कैसे क्या उनको सुयोग मिला जिसके माध्यम से वो मनुष्य गति का बंध करता है, तो होता है। जिनेंद्र भगवान कहते हैं अशुभ लेशा भले ही हो लेकिन अशुभ लेशा के साथ भी यदि हम कषाय की चर्चा करते हैं, कषाय परिणामों की चर्चा करते हैं, तो निबोध में रहने वाला जीव भी निरंतर तीव्र कषाय कभी नहीं होता, कभी कभी कषाय मंद पड़ जाती है। कोई भी मनुष्य, कोई भी जीव इस धरती का निरंतर तीव्र कषाय बन करके या निरंतर मंद कषाय बन करके रह नहीं सकता, ये विशेषता। तीव्र कषाय भी नहीं रह सकता है तो मंद कषाय भी निरंतर नहीं रह सकता। तीव्र कषाय परिणामों में रहेगा तो भाव अशुभ रहेंगे और उसके माध्यम से अशुभ गति का बंध हो सकता है। उसी निबोधी जीव को जब परिणाम संक्लेश होते हैं तो पुनः वह निबोध पर्याय को ही बंद करके उसके उदय में पुनः निबोधी जीव बन करके जन्म ले सकता है और वहां जीवन व्यतीत कर सकता है। और ऐसा अनादिकाल तक संक्लेश परिणामों के समय में मर करके वहीं वहीं जन्म लेना, वहीं वहीं मरण करना, इस प्रकार अनादिकाल तक निबोध पर्याय में रह सकता है, ये तीव्र कषाय का परिणाम है। बहुत विशेष बात है, यह जीव कर्म बंध अवश्य करता है, निरंतर करता है। आप भी इस समय कर्म बंध कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं क्या? कर रहे हैं। एक का कर रहे हैं क्या? दोनों का कर रहे हैं। पुण्य का ही कर रहे हैं क्या? पाप का भी कर रहे हैं। तो कहते हैं पुण्य और पाप दोनों का बंध होता है, क्योंकि आपका मन वचन का है, प्रवचन सुनने में लगा हुआ है और यह शुभ कार्य है, शुभ परिणाम है, शुभ भाव है, लेकिन कषाय इसके साथ मंद होने से आपको पुण्य कर्म का बंध अवश्य हो रहा है, लेकिन आप जिस गुण स्थान में रहते हैं, गुण स्थान समझते क्या होता है, गुणों का स्थान, गुण स्थान ये सीढ़ियां हैं गुणों को प्राप्त करने की। पहले गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान तक की ये जो सीढ़ियां हैं चढ़ने की, ये मोक्ष मार्ग में चलने वाले जीव को अपने गुणों को विकास करने के लिए बताए गए हैं। जैसा जैसा जीव कषाय परिणामों से, मिथ्या परिणामों से, अज्ञान परिणामों से ऊपर उठता चला जाएगा, वैसे वैसे गुण स्थान की ये सीढ़ियां भी बढ़ती जाती है। गुण स्थान कितने होते हैं? 14 गुण स्थान होते हैं, और यदि 14 गुण स्थान पार करेंगे तो आप सिद्ध परमात्मा बन जाएंगे, सिद्ध परमेष्ठी बन जाएंगे। और यदि पहला गुण स्थान पार करेंगे तो यदि आप 4थे गुण स्थान में आते हैं तो एक अंतरात्मा बन जाएंगे, जगन्य अंतरात्मा यानी धर्मात्मा, धर्मात्मा बन जाएंगे। अधर्म आत्माओं का संबंध, अधर्म आत्मा भव्यात्माओं का या अभव्यात्माओं का संबंध पहले गुणस्थान से लेकर 3रे गुणस्थान तक होता है, क्योंकि धर्म के संबंध में समझदारी पहले गुणस्थान से 3रे गुणस्थान तक ठीक से नहीं रहती। जैसा होना चाहिए वैसे धर्म के संबंध में जो श्रद्धा, जो विचारधारा, जो धारणा होती है ना, ये धारणा विचारधारा पहले गुणस्थान से 3रे गुणस्थान ठीक से नहीं होती, और इस कारण से उन गुणस्थानों को और उन गुणस्थानों में रहने वाले आत्माओं को अधर्मात्मा कहा है। अपन धर्मात्मा किस गुणस्थान में आने के बाद बन सकते हैं? 4थे गुणस्थान। भगवान कहते हैं धर्मात्मा बनना 4थे गुणस्थान से प्रारंभ होता है और 4थे गुणस्थान में आने के पश्चात वह कोई बहुत बड़ा त्यागी सैनी नहीं होता, केवल एक श्रद्धालु होता है। श्रद्धा के बल पर 4था गुणस्थान प्रकट होता है, और वह श्रद्धा क्या है? तो कहते हैं धर्म तत्वों की श्रद्धा। और धर्म तत्व क्या है? संवर तत्व तो धर्म तत्व है, निर्जरा तत्व धर्म तत्व है, मोक्ष तत्व धर्म तत्व है, और ये परमार्थ क्षेत्र में उपलब्ध होते हैं। विदाउट सम्यक दर्शन प्राप्त किए संवर तत्व को और निर्जरा तत्व को भी हम प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये कर्म है, कर्मों को जीतना ही जैनत्व है, कल बताया था जैन किसको कहते हैं, जो जीतता है उसका नाम जैन है। तो कम से कम जगन्य जैन बनने के लिए कितना क्या जीतना पड़ेगा, तो भगवान कहते हैं 41 कर्मों पर विजय तो प्राप्त आपको करना ही पड़ेगा। 148 कर्म होते हैं और उसमें बंध योग 120 होते हैं। कितने? 148 में से केवल बंध योग 120 होते हैं, और 120 में से जो बंध योग होने योग्य हैं उसमें से केवल आपको 41 कर्मों पर विजय प्राप्त करना है। केवल 41, सिर्फ 41। और किसके बल पर? कोई पसीना नहीं बहाना है, कोई मेहनत नहीं करना है, कोई त्याग धर्म की ओर जाने का पुरुषार्थ भी नहीं करना है। केवल इतना करना है कि त्याग से संवर होता है, संयम से, त्याग से, तप से संवर होता है, निर्जरा होती है। वह निर्जरा तत्व त्याग के बिना और संयम के बिना संभव नहीं है। इतनी भर परिणाम आपके हो गए और उस पर श्रद्धा जगी कि त्याग से ही सम्यक्त्व की उत्पत्ति होती है, त्याग से ही धर्म की उपलब्धि होती है, त्याग से ही जीव को शांति मिलती है, त्याग से ही सुख मिलता है। इस प्रकार के परिणाम श्रद्धा पूर्वक उपादे तत्व को उपादे समझ करके, उपादे तत्व पर श्रद्धा आस्था जगा करके उस ओर यदि जीव आकर्षित होता है और श्रद्धा कर बैठता है, तो कहते हैं वह जगन्य जैन बन गया मोक्ष मार्ग में। मार्ग में तो नहीं आया, लेकिन मोक्ष मार्ग की ओर आने के लिए पात्रता आ गई। मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए तो छठे और सप्तम गुण स्थान में जाना पड़ता है, लेकिन मोक्ष मार्ग की ओर जाने की पात्रता के लिए हमें कम से कम चौथा गुण स्थान तो पाना ही पड़ता है। चौथी सीढ़ी पर जाना पड़ेगा, तो श्रद्धा के बल पर जा सकते हैं। और श्रद्धा के बल पर जाने वाला जीव कुछ भी त्याग नहीं करता। जैसा कि कहो कि उसने रात्रि भोजन त्याग दिया, फलाना वस्तु त्याग दिया, बहुत बड़ा त्याग करने के बाद आ गया, ये बात नहीं है। तो किसका त्याग करता है? केवल एक त्याग श्रद्धा के बल पर। किसका? जो असत्य होता है, मिथ्या होता है, दुखदायी होता है, कर्म बंध के लिए निरंतर कारण बनता है, समस्त कर्मों के आश्रय और बंध में निमित्तभूत होता है, ऐसी एक कषाय और एक मिथ्यात्व, ये दो प्रकृतियों को त्याग करता है, कर्मों को त्याग करता है। सम्यक दृष्टि बनने के लिए कर्मों का त्याग करना पड़ता है, और बाहर में कुछ त्याग करना पड़ता है, तो एक सामान्य चीज जिसको कि हम मानवीय धर्म की कोटि में भी गिन नहीं सकते, ऐसे एक दो तीन वस्तुओं को त्याग देता है जो करने योग्य नहीं है, और करता चला आ रहा हो तो, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, पात्रता तो उस संबंधी स्वयं वहां पर मौजूद रहेगी। लेकिन ऐसे एक दो तीन वस्तुओं का संकल्प लेता है, क्योंकि वो तीन वस्तु उसके लिए बाधक है। 10 प्रकार के परिग्रह में से किसी भी परिग्रह को त्याग करता हो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक मानवीय जीवन जीने के लिए जिसका त्याग करना अनिवार्य है, उसको तो नियम से त्याग करना पड़ेगा। उसके बिना तो मानवीय आचार विचार के बिना मानव धर्म प्रकट नहीं हो सकता, और मानव धर्म प्रकट नहीं होगा तो आंतरिक जो जैनत्व रूप धर्म है उसको प्रकट करना मुश्किल होता है। वो क्या त्याग करता है? अंतरंग में एक मिथ्यात्व, जिसके उदय के कारण से आत्मा में गड़बड़ी हलचली मची रहती है, संदेह उत्पन्न होता रहता है, धर्म का स्वरूप ऐसा है क्या वैसा है, ऐसा है क्या वैसा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता, आप बताओ तो मैं चलता हूँ, बताओ जल्दी चलने के लिए मैं तैयार हूँ, दूसरे बताए और हम चले, इस प्रकार की विचारधारा में जीता रहता है, उसको धर्म का सच्चा स्वरूप पता लगाने के लिए समय नहीं रहता, और प्रमाद प्रमादी बना रहता है इस प्रमाद के कारण और विद्यमान अज्ञान के कारण वह सम्यक्त्व की ओर नहीं आ सकता। सम्यक्त्व धर्म उससे उपलब्ध नहीं होता और सम्यक्त्व धर्म यह आंतरिक जैनत्व है और बाहरी जैनत्व क्या है तो मानवीयता, मानवीयता जो मानव मात्र के लिए ग्रहण नहीं करना चाहिए, सेवन नहीं करना चाहिए, ऐसे वस्तुओं का सेवन करना अमानवीयता है और उनका त्याग करना मानवीयता है। तो क्या होगा, वो दो तीन वस्तु है, बोलो ध्यान आता है किसी को, तीन ही वस्तु है जिसको खाने से हम अमानवीय जीवन जीते हैं और जिसको त्यागने से हम मानवीय जीवन जीने लगते हैं। कौन से तीन वस्तु? मकार। कैसा कार? वो कार नहीं जो आप फोर व्हीलर छोड़ करके आए, मकार तीन कार, मध्य, मांस और मधु, तीन वस्तुओं का त्याग करना ये मानवीय जीवन है। एक धर्मात्मा बनने से पहले हमें एक आदर्श मानव बनना पड़ता है, एक आदर्श मानवीय जीवन जीने की क्षमता जिस भव्यात्मा के पास होती है वही भव्यात्मा धर्म को स्वीकार करने की पात्रता रखता है और वही पात्र है। कौन कहता है मांस खाने वाला मानव है, मानवीयता है, आदर्श जीवन है उसका, कोई कह सकता नहीं। मांस खाने वाले मनुष्य तो अज्ञानी तिर्यंश प्राणी के समान तो है, और कितना बड़ा पाप लगता है मांस खाने में, कितना बड़ा पाप लगता है इन बेकरी सामानों को खाने में। हम डायरेक्ट मांसाहारी तो नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट अवश्य मांसाहारी, क्यों? क्योंकि हम खान पान में विवेक रख करके भोजन नहीं करते, खाते पीते नहीं हैं, तो वहां पर मानवीयता भी समाप्त होती है इनडायरेक्ट। अज्ञात अवस्था में हम मानवीयता को खो देते और समझते हैं कि हम मनुष्य हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी तरह से खाते, शाकाहारी। क्या खाते हैं हम? मैगी खाते हैं। क्या खाते हैं हम? कैडबरी खाते हैं। क्या खाते हैं? बेकरी सामान के जितने भी आज नाम हैं, आप बताइए कौन सी बेकरी सामान आज शुद्ध शाकाहारी रहा है? है कोई? एक भी नहीं है। तो फिर इसको हम खाते हैं कि नहीं? अवश्य खाते हैं, खाना पड़ता है, मजबूरी है, कुछ भी नहीं मिला तो ये लेकर के खाना, मजबूरी का खाना। क्या हमको मानवीय धर्म से चुप करा के अमानवीय नहीं बना सकता? अवश्य बनाता है। चाहे हम जानबूझ करके खाएं, चाहे मजबूरी में खाएं, खाते समय खाना ही पड़ता है, उन वस्तुओं का सेवन होना ही पड़ता है, करना ही पड़ता है, तो मांस खाने से हम बच नहीं पाए तो मांस खाने का पाप हमें लगता होगा कि नहीं लगता होगा? महाराज हमको क्यों लगेगा? जिसने बनाया, जिसने मारा, जिसने पकाया, जिसने बाजार में बेचा, उन सबको लगेगा, खाने वालों को क्यों लगेगा? हम तो रेडीमेड खाते हैं। ऐसा है क्या? नहीं। जीव हत्या करने वाले को भी उतना ही पाप लगता है जितना पाप बेचने वाला, जो हत्या करता है उसके लिए जो बेचता है, बेचने वालों को भी समान पाप है, काटने वालों को भी समान पाप है, और उसके पश्चात उन वस्तुओं से जो उससे प्रोडक्ट निकलते हैं उन सबको लेकर के अलग अलग चीज़ों से मिक्स करके उसको बाजार में लाकर शाकाहार मिश्रित भोजन को परोसना, शाकाहार मिश्रित इन वस्तुओं को बेचना और खाना, ये खाने वाले, बेचने वाले, काटने वाले समान पाप के भागीदार होते हैं। और आज मानवीयता गिर गई है, पूर्णतः गिर गई है, क्योंकि हमारा खान पान का विचार समाप्त हो गया है। कम से कम इतना पुरुषार्थ तो हमें करना ही पड़ेगा कि शाकाहार प्रोडक्शन निकले और आपस में शाकाहार प्रेमी, अहिंसा प्रेमी, धर्म प्रेमी मिलजुल करके हमें विचार करना पड़ेगा और शाकाहार की ओर जाना पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना, तो आप चिंतन क्यों नहीं करते? पड़ेगा ये तो समझ में आता है, यहाँ पड़ेगा कह देते हैं और बाद में जो कहते हैं बाजार में जाने के बाद भूल जाते हैं और उन वस्तुओं का खाने लगते हैं। नहीं, गलत है। हमारी मानवीयता अधः पतन की ओर जा रही है, इसको अधः पतन की ओर जाने नहीं देना है। तो क्या करना? हम परस्पर में साकार पर प्रेमी धर्म प्रेमी मिले, एक मीटिंग बनाए, एक कमेटी बनाए, एक संस्था खड़ा कर दें जो आजीवन पर्यंत के लिए हमें शाकाहार परोसने लायक ऐसा प्रोडक्शन, ऐसा कोई कंपनी निकले। और ये निकल जाए तो बहुत लॉन्ग टाइम तक चले और शाकाहार से रहने के लिए सबके लिए निमित्त मिले, अवसर मिले, सहयोग मिले और ऐसा अवसर मिले। तो ये तो प्रयास हमारे लिए करना ही पड़ेगा ना। कौन करेगा? आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? भगवान करेंगे कि आ करके? भगवान इतने दयालु नहीं है कि आप मांसाहारी हो रहे हैं इसलिए वही आकर के एक फैक्ट्री खोले, एक कंपनी खोले और आपके शाकाहार वस्तुओं को बांटते हुए बैठ जाए दुकान खोल करके? नहीं, हमें एक धर्मात्मा बनना है। हमारा लक्ष्य है एक धर्मात्मा बनना। और वे धर्मात्मा तीन प्रकार के होते हैं, जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। तीन प्रकार के धर्मात्मा, इन्हीं को तो जैन कहते हैं अपन। इन्हीं तीन प्रकार के धर्मात्माओं का नाम है जैन। इन तीनों की क्या विशेषता है? तो पहले सर्वप्रथम ये आदर्श एक मानव होते हैं, मानव धर्म का आचार विचार इनमें रहता है, इनमें सप्त व्यसन नहीं होते, इनमें मद्य मांस मधु का त्याग होता है, ये आठ मूल गुणों के धारी होते हैं। आगम में बताए हुए ये आठ प्रकार के मूल गुण और सप्त व्यसनों का त्याग, ये कोई धर्मात्मा का लक्षण नहीं, मानवीयता का लक्षण। धर्मात्मा का लक्षण और अलग होता है, उसकी चर्चा अलग होती है। ये मानवीयता का लक्षण है। मानव जिसको नहीं खाना चाहिए वो खा रहा है तो मानव नहीं, अमानवी जीवन जी रहा है। इसलिए मानवीयता के लक्षण समाप्त कहा जाता है। बहुत गंभीरता से विचार करने की बात है। यह युग ऐसा युग आया है, मशीन युग आने के कारण पशुओं की हत्या, असंख्य असंख्य लाखों करोड़ों की संख्या में हत्या हो रही है और ये हत्या होने वाले पशुओं के ही कलेवर को बांटा जा रहा है और शाकाहार में मांसाहार मिश्र करके प्रत्येक वस्तु बनाई जा रही है और खिलाई जा रही है। मांसाहारी बहुत कम थे चतुर्थ काल में, उस अपेक्षा से देखा जाए तो आज कोई मांसाहार से बच ही नहीं पाया। चतुर्थ काल में एक परिस्थिति ऐसी थी, एक वातावरण ऐसा था कि कुछ वर्ग मांसाहार से बिल्कुल बचा हुआ पाया जाता था, लेकिन आज किसी भी वर्ग को हम मांसाहार से बचा हुआ देख नहीं सकते। दुख होता है, साधु संतों के हृदय में बहुत बड़ा दुख होता है ये सब देख करके, लेकिन उस दुख का निवारण भी करने वाले कौन? आप ही तो है ना, आपको ही करना पड़ेगा ना। गंभीर निर्णय लो, पुणे के भीतर ऐसा एक कंपनी खुल जाए, ऐसा एक प्रोडक्शन उत्पन्न हो जाए जहां से शाकाहार प्रेमी जो बिल्कुल मानवीय जीवन जीना चाहते हैं और मानवीय जीवनता के आधार पर एक जैनत्व प्राप्त करना चाहते हैं, सम्यक दर्शन इतना आसान नहीं कि बैठे बैठे आ जाए, श्रद्धा मात्र से आ जाए, श्रद्धा विपरीत हो जाए तो मिथ्या तो पल्ले में पड़ता है और श्रद्धा समीचीन बन जाए तो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो जाती है। सम्यक तो एक ऐसा रत्न है जिस रत्न के उत्पन्न होने पर तीर्थंकर प्रकृति को भी, उतने बड़े प्रकृति को भी बंद करने का अधिकारी बन जाता है, पात्रता उसमें आती है। तीर्थंकर मिथ्या दृष्टि जीव नहीं बन सकते। पहले गुणस्थान वाले आज तक कोई भी प्रथम गुणस्थान में रह करके दया भाव से, आस्था भाव से, श्रद्धा भाव से, वहाँ पर जो कुछ भी श्रद्धा पाई जाती है असमीचीन श्रद्धा कहलाती है, उस असमीचीन श्रद्धा के बल बल पर कोई भी आत्मा तीर्थंकर प्रकृति का बंद नहीं किया है। किया है तो समीचीन श्रद्धा के बल पर ही तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया है। बहुत गंभीर मामला है, सीरियस लेना इस बात को थोड़ा। हमारा क्या गिर रहा है? धर्म तो गिर ही रहा है, लेकिन हमारी मानवीयता भी पतन की ओर जा रही है। किस कारण? केवल खान पान के निमित्त से, उसके कारण से नहीं। अगर हमारे पास एक धर्म को धारण करने की क्षमता नहीं है, धर्म प्राप्त करना एक कठिन पड़ रहा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन एक आदर्श मानवी बनने से कभी चूकना नहीं चाहिए। और इसलिए सभी तीर्थंकरों ने 8 मूल गुणों को और सप्त व्यसन त्याग को, जिसके भीतर 5 अनुरत और 3 मकार का त्याग बताया है, ये प्राचीन उपदेश है। आर्वाचीन उपदेश के भीतर 5 उदुम्बर फलों का समावेश कर दिया और 8 मूल गुण कर करके उपदेश दिया, वो उन लोगों के लिए लागू हो सकता है जो लोग इन 5 फलों को खाते हों, आदिवासी हों, और वहाँ पर विवेक के बिना उन त्रस जीवों से भरे हुए 5 उदुम्बर को खाने की प्रथा बड़ी हो किसी युग में, और उस युग को देखते हुए आचार्यों ने उसका विधान किया हो कि 5 उदुम्बर सहित 3 मकार सहित त्याग सहित जो वो होता है 8 मूल गुण, वही मूल गुण है, और वह भी मानवीय जीवन जीने के लिए ही उपदेश था। और जो प्राचीन उपदेश था 5 अनुरतों से, जिसको स्थूल 5 अनुरत कहते हैं, जिसके भीतर त्याग तो नहीं है लेकिन संतोष वृत्ति धारण करते हुए मानवीय जीवन स्थूल हिंसा का त्याग करके शाकाहारी बन करके मानवीय जीवन जीने का नाम ही तो 5 स्थूल अनुरत है। इसको छोड़कर और क्या है? एक प्रतिमाधारी बनता है श्रावक, नैष्ठिक श्रावक बनता है, तो आदर्श मानवीय जीवन जीते जीते वह बचे हुए 10 प्रकार के जो परिग्रह हैं, जो पाप बंध के लिए कारणीभूत होते हैं, उनको भी मर्यादित करता हुआ आगे बढ़ने का विचार करता है और आगे बढ़ता रहता, उसको तो हम प्रतिमाधारी नैष्ठिक श्रावक कहते हैं। लेकिन 8 मूल गुणों में आने वाले जो 5 अनुवृत्त होते हैं, ये बहुत स्थूल होते हैं, बहुत ही स्थूल। ये हमको शाकाहारी बनाते हैं, ये हमको संतोषी बनाते हैं, संतोष का जीवन जीने की कला सिखाते हैं। स्थूल परिग्रह प्रमाण अनुवृत्त जो 8 मूल गुणों में आता है, उसका नाम क्या है? यहाँ पर परिग्रहों को कोई त्याग नहीं करता है। 10 प्रकार के परिग्रहों में से कोई एक देश परिग्रह त्याग करता हो ऐसी बात नहीं है, परंतु परिग्रह पाप का कारण है, परिग्रह दुख का कारण है, ये पाप है, दुख है, इसलिए इससे मुझे बचना चाहिए, ऐसा हेयोपादे का ज्ञान प्राप्त हो करके ये छोड़ना चाहिए और ये करना चाहिए, ये अमानवीय आचार विचार है और ये मानवीय आचार विचार है, इस प्रकार समझ करके जो मानवीय आचार विचार के प्रति आकर्षित होकर के श्रद्धालु बनता है, वह धर्म नहीं कहलाता, वो धर्म का प्रारंभिक लक्षण मानवीय धर्म कहलाता। ऐसे प्रारंभिक लक्षण स्वरूप इस मानवीय धर्म को धारण किए बिना कोई भी सम्यक दृष्टि नहीं बन सकेगा। इसलिए तीर्थंकरों का उपदेश है, पंचम काल में ये पाप बढ़ते जाएंगे, अज्ञानता बढ़ती जाएगी, विचारधाराओं में समीचीन विचारधारा कम रहेगी, ज्यादा डीप नहीं देखेंगे लोग, उनको फुर्सत नहीं रहेगा, भौतिक सुख सुविधा के पीछे दौड़ लगाते रहेंगे और उसी के पीछे अपने जीवन को समाप्त करेंगे। यहाँ पर धर्म मानवीयता के बारे में विचार करने के लिए किसके पास समय है? दौड़ धूप केवल आर्थिक अर्थ 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 युग हो गया है और अर्थ युग अनर्थ का कारण बन गया। संतोष का जीवन जीने का वो अवसर भी हम खो गए, यही अमानवीयता का जीवन है। तो 8 मूल गुण में जो परिग्रह प्रमाण, स्थूल परिग्रह प्रमाण जो व्रत है ना वो और कुछ भी नहीं, इसमें संतोष धारण करने की बात है। आप जो कमाते हैं अपने पुण्य के उदय से, अपने पाप कर्म के क्षोभशम के निमित्त से, जितने भोगों भोग सामग्री, चाहे वो धन हो चाहे और कोई वस्तु हो, जो उपलब्ध हो जाती है, उस उपलब्धि में आप संतोष भाव धारण करेंगे, हाय हाय त्राय त्राय के विचार को त्याग करेंगे। ये हाय हाय परिणामों को त्याग करने का नाम ही महान अनुव्रत है, स्थूल अनुव्रत, अब परिग्रह प्रमाण अनुव्रत। हाय हाय का जीवन जीने वाला हाय हाय परिणामों से ही मरण करता है। तीव्र कषायें होती हैं, तीव्र इच्छाएं होती हैं, और तीव्र परिणाम होने से दो गति का बंद होता है, या तो नरक गति का या तो त्रिरंची गति का, दो में से एक होता है। हाय हाय परिणामों में दुर्गति में जाता है, और उसके लिए यदि ब्रेक भी लगाता है तो देखिए, आठ मूल गुणों को धारण करने वाला व्यक्ति यदि परिग्रह प्रमाण अनुव्रत को धारण करता है और उसमें कुछ भी नहीं करना है, मेरे पुण्य के उदय से मैं जितना कमा लूंगा उसमें संतोष जीवन जीऊंगा, मैं हाय हाय नहीं करूंगा, कम पड़ गया, और कमाऊं, ये परिणाम ठीक नहीं है। ये तीव्र कषाय के परिणाम है, इस पर जो ब्रेक लगाना होता है उसी का नाम मानवीयता है, और ये मानवीय धर्म है। और ये मानवीय धर्म अगर पूरी दुनिया में छा गया तो समझ लेना ये धरती स्वर्ग बन जाए। कहीं भी कोई राजकीय झगड़े, आपस में खिंचातानी, बड़े बड़े युद्ध इत्यादि नहीं हो सकते, हो सकेंगे क्या? सभी लोग संतोष व्रत को धारण कर ले, अपने पास जितना परिग्रह आएगा उसमें हम संतोष का जीवन जिएंगे, हाय हाय का जीवन नहीं जिएंगे, अति आशा नहीं करेंगे। अति आशा से इति होती है, यह निश्चित है, वह जीवन हम नहीं जिएंगे। यदि यह संकल्प प्रत्येक मानव ले ले तो कल्पना करो कि क्या हो सकता है, ये धरती पर क्या परिवर्तन आ सकता है। और महावीर भगवान ने इसी का संदेश सूत्र के रूप में दिया था, जीवो और जीने दो। आप स्वयं जी रहे हैं, संतोष जीवन जियो। आप ज्यादा परिग्रह इकट्ठा करेंगे तो दूसरे के लिए कम पड़ेगा और उसके लिए हाय हाय करना पड़ेगा, वो सुख का जीवन नहीं जी सकेगा, भौतिक जीवन में दुख में पड़ जाएगा उसका, इस प्रकार का जीवन दूसरा नहीं जी सकेगा। परिग्रह बहुत बड़ा पाप है, सारे पापों की उत्पत्ति, सारे झगड़े, सारे युद्ध जो भी होते हैं दुनिया में परिग्रह का कारण से होते हैं, धरती के वजह से और पैसे अर्थ के वजह से। आज सबसे झगड़े घर घर में यदि है तो धरती के वजह से है कि पैसे के वजह से, बोलो आपका क्या अनुभव है, बताओ। जमीन के वजह से झगड़े ज्यादा है दुनिया में या पैसे के वजह से? मैं नहीं कहता कि धरती के वजह से झगड़े ज्यादा हैं, बहुत कम हैं। पैसे का झगड़ा तो हर घर में है ना। और देखो ये पैसा परिग्रह है, परिग्रह पाप है, और यह पाप किस प्रकार से आत्मा के परिणामों को बिगाड़ने में निमित्त बनता है, और आत्मा परिग्रह के पीछे पड़ करके किस प्रकार के अपने जीवन को समाप्त कर लेता है, ये सोचने समझने की बात है, विचार करने की बात है। समय पूरा आपका एक घंटा हो गया, 9:30, कौन घंटा बोलना था, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट और लेता हूँ, संहार कर लेता हूँ। मैंने कहाँ से शुरू किया था, तीर्थंकर प्रकृति का बंध, एक बार करना बंध होना प्रारंभ होता है तो वह तब तक नहीं रुकता जब तक कि वह आत्मा तीर्थंकर नहीं बनता। बनने से पूर्व अंतर मुहूर्त पहले तीर्थंकर प्रकृति का बंध होना रुक जाता है, अंतर मुहूर्त पहले। यानी आठवें गुण स्थान में चढ़कर छह भाग व्यतीत करने, छठे भाग तक इसका बंद होता है, ऐसा तीर्थंकर भगवंतों ने ही केवल ज्ञान के माध्यम से उपदेश दिया है और बंद रुक जाता है और उदय आ जाता है तो तीर्थंकर बन जाते हैं। जब तक यह तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं होता तब तक वे एक जैन साधक कहलाते हैं। तीर्थंकर सबसे बड़े उत्कृष्ट जैन साधक है, जैन साधु है, जैन संत है। इस धरती के ऐसे महान संत आदिनाथ भगवान प्रथम दिगंबर मुनि हुए इस युग के आदि में। प्रथम दिगंबर मुनि आदिनाथ थे और उसके पश्चात ही दिगंबर दीक्षा लेने की परंपरा पुनः शुरू हुई। उसके पहले तीन भोग भूमियाँ थी, कर्म भूमि नहीं थी, इसलिए उस युग में कोई साधु नहीं दिखते थे। मनुष्य थे, त्रिरंज प्राणी थे, त्रिरंज प्राणी अपना जीवन जीते थे, मनुष्य अपना जीवन जीते थे, जीवन जीने के लिए जीवनोपाय उनके कल्प वृक्ष थे। कल्प वृक्षों के माध्यम से सभी प्रकार की भोग सामग्री उपलब्ध हो जाती थी और सुखमय रहते थे। पर वो काल जब चला गया तो कमाओ और खाओ, कमाए बिना कुछ नहीं मिलेगा, ये युग आ गया। इसी को कर्म भूमि कहते हैं। करो कि बिना नहीं मिलेगा, कुछ करो तो करने के पश्चात, पसीना बहाने के पश्चात मिलेगा। और वह कर्म भूमि का युग प्रारंभ हो गया था आदिनाथ भगवान के और उनके जो पिता थे नाभि राय, उनके काल में कर्म भूमि का वातावरण निर्मित होने जा रहा था। और उस काल में असी मसी कृषि शिल्प व्यवहार वाणिज्य इत्यादि छठ कर्मों का उपदेश आदिनाथ भगवान को देना पड़ा और कर्म भूमि का जीवन किस प्रकार जीना होता है उन्होंने बताया, समझाया और उसी पथ पर आज तक हम चलते रहे हैं। आदिनाथ भगवान कितने साल पहले हुए थे? अरबों खरबों साल पहले। एक चतुर्थ काल, एक 42,000 वर्ष कम एक कोटा कोटी सावरोपम का होता है। मतलब ये 42,000 वर्ष तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। एक कोटा कोटी सागर, एक करोड़ को एक करोड़ से गुणा करने पर एक कोटा कोटी आता है। उस एक कोटा कोटी में जितने सागर हैं उतने लंबा चौड़ा, उतना लंबा चौड़ा काल चतुर्थ काल का काल कहलाता है। उतने काल पीछे आदिनाथ भगवान का जन्म हुआ था, बल्कि उससे पहले ही कहना चाहिए क्योंकि तृतीय काल में जन्मे और तृतीय काल में ही आदिनाथ भगवान मोक्ष गए, चतुर्थ काल में मोक्ष नहीं हुआ। पुंडावसर्पणी काल के दोष से तृतीय काल के अंत में वातावरण में इतना जल्दी परिवर्तन आ चुका था कि जिस समय में जो वातावरण निर्मित होना चाहिए था वहाँ उस समय में न हो करके काल का तृतीय अंतिम समय चल रहा था और उस समय सारा परिवर्तन सृष्टि में आ गया। यानी कल्प वृक्ष धीरे धीरे जो भोग सामग्री उपलब्ध करा सकते थे वो सभी क्षय को प्राप्त होने लगे, उनका अभाव होने लगा। इस वजह से दुखदायी जीवन जीने का प्रसंग आ गया। जीव तो भोग भूमि के थे लेकिन कल्प वृक्षों के अभाव के कारण दुखी होने लगे थे और फिर वातावरण कर्म भूमि का धीरे धीरे निर्माण होने लगा था। उस परिस्थिति में किस प्रकार का व्यावहारिक जीवन, सांसारिक जीवन, सुखमय जीवन, भौतिक जीवन और परमार्थिक जीवन जिया जाता है उसका उपदेश आदिनाथ भगवान ने काल के आदि में दिया था। वो काल चतुर्थ काल नहीं था, तृतीय काल का अंत था। दीक्षा भी तृतीय काल में हुई, केवल ज्ञान भी तृतीय काल में हुआ और उनको निर्वाण की प्राप्ति भी तृतीय काल में ही हुआ। चौथा काल लगने में कितना समय शेष था जब आदिनाथ भगवान को निर्वाण की प्राप्ति हुई, मोक्ष प्राप्त कर लिया उन्होंने? तो कहते हैं 3 साल, है ना, 3 साल 8.5 महीने शेष था चतुर्थ काल लगने में और तृतीय काल समाप्त होने में। तृतीय काल का इतना समय शेष था, 3 साल 8.5 महीने समय शेष रहते हुए आदिनाथ भगवान को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसका मतलब आदिनाथ भगवान कितने साल पहले हुए हैं हम सालों में तो कह नहीं सकते, परंतु सागरों में अवश्य कह सकते हैं। कितने सागर? एक कोड़ा कोड़ी सागर काल के पीछे आदिनाथ भगवान ने निर्वाण को प्राप्त कर लिया था। इधर ये 42,000 वर्ष कम कर दिया था इसको, और उधर 3 साल 8.5 महीने उसमें प्लस कर दो। इतने काल के पीछे आदिनाथ भगवान का जमाना यहीं पर इसी धरती पर था। मानव दौड़ते थे खाने पीने के लिए, दुखी होते थे, समझ में नहीं आता था, पीड़ित होते थे, और जो जो ज्ञानी होते थे जिनको सब ये भौतिक जीवन जीने के बातें पता रहती थी वहाँ पर जाकर के पूछते थे क्या करना चाहिए, अब आप बताओ आप बताओ आप बताओ। उसमें अच्छी तरह से बताने वाले तो आदिनाथ भगवान थे। उन्होंने खेती करना सिखाया, उन्होंने उसको उगाना सिखाया, गृहस्थ अवस्था में, मुनि बनने के भगवान बनने के बाद नहीं, गृहस्थ अवस्था में खेती करना सिखाया, घर बनाना सिखाया, और कैसे खाना, कैसे काटना, कैसे पकाना इत्यादि सारी एक एक बातें आदिनाथ भगवान ने उस समय के मानवों को सिखाया था। ये सब शास्त्रों में उल्लेख आता है। इतना बड़ा इतिहास, इतने पीछे का इतिहास शास्त्रों में उल्लेख आता है, और ये सब उपदेश 2,500 वर्ष पहले से भगवान महावीर ने, जो अपने केवल ज्ञान के द्वारा इतने पूर्व के इतिहास को जान लिया था और उपदेश दिया था, वह उपदेश क्रमशः आचार्य परंपरा में बचा हुआ था और उसी को लिख के रखा है। वो भगवान महावीर की ही वाणी है। आइए, आप सभी बड़े भाग्यशाली हैं जो आज इस पंडाल में बैठ करके उपदेश सुनते हुए अपने लौकिक जीवन को, भौतिक जीवन को समझ रहे हैं, भौतिक जीवन हमें कैसे जीना चाहिए और एक धार्मिक किस प्रकार से बनना चाहिए, ये दोनों बातें आप समझने के लिए प्रयास कर रहे हैं। निश्चित ही आप यदि भौतिक जीवन जीना अच्छी तरह से सीख लेंगे, एक आदर्श मानवीय जीवन जीना सीख लेंगे, तो निश्चित ही आप धर्म को भी स्वीकार करने के पात्र बन जाएंगे। जब तक 8 मूल गुणों का पालन अपने जीवन में नहीं होता, तब तक मानवीयता नहीं आती, और जब तक मानवीयता नहीं आती तब तक वह चतुर्गुण स्थान को प्राप्त करके जगन्य धर्मात्मा बनने के पात्रता को भी हासिल नहीं करता। क्योंकि इतिहास में ऐसे कई कथाएं पुराणों में आती हैं। इतिहास में कहा है, एक सिंह भी यदि सम्यक दर्शन को प्राप्त होता है, एक सिंह, क्रूर सिंह जो मांसाहारी होता है, मांस के बिना जीवन जी नहीं सकता, उसका खुद का वही आहार है, वो उसका आहार है, हमारा थोड़ी है। हम तो मानव है, मानवीय आहार शाकाहार है, मांसाहार हमारा आहार नहीं, और न ही ये मिश्राहार जो आज आ रहा है बाजार में, ये हमारा आहार है। मिश्राहार मानव आहार नहीं, और साबुत आहार भी मांसाहार वो मानवीय आहार नहीं, वो अमानवीय आहार है। इन दोनों प्रकार के आहारों से बचना बहुत बड़ा आवश्यक हो गया है आज की युग में, और होना चाहिए। आप धड़ल्ले से खरीदते हैं, अपने बच्चों को खिलाते हैं, गोदी में बिठा करके, कौन से बिस्किट, पार्ले बिस्किट, कौन सा चॉकलेट, मुझे याद तक नहीं है, क्योंकि जो खाते ही नहीं उनको याद भी कैसे रह सकता है, जो खाते हैं उनके दृष्टि में तो सदा सबके नाम ताजे रहते हैं। बच्चों को तो बिल्कुल चॉकलेट कहते हैं, नींद से उठ के बैठ जाते हैं, धड़ल्ले से आप 10 रुपये हाथ में दे रहे तो जा करके वह दुकान से खरीद करके लाता है और उस चीज़ को खाने लगता है। आता है कि नहीं, खाते समय आपके गोदी में बैठ करके खाता है, भले ही आप न खाते चॉकलेट बिस्किट मैगी, आप भले ही उन चीज़ों का त्यागी हो, लेकिन बच्चा मांग रहा है तो आप जरूर देते, क्योंकि उसके दुख को आप देखा नहीं जाता, दया कर लेते हैं, और दया इस तरह से करते हैं कि पैसा दे देते हैं और उसी पैसे से वो बाजार के उसी चॉकलेट को, उसी कैडबरी को, उसी मैगी को ला करके गोदी में बैठ करके खा रहा है, तब भी आप चिंतन नहीं कर पाते ये हमारी गोदी में बैठकर खाने वाला अपना बच्चा नरक जा रहा है और मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। आप स्वर्ग जा रहे हैं और आप आपका बच्चा कहाँ जा रहा है? गोदी में बैठ करके कौन सा कर्म का बंद कर रहा है? मांसाहारी बन करके मांस खा रहा है। आपको दुख नहीं होता ये? आप विचार नहीं कर पाते उस समय में? आप अपने बच्चे पर ये दया भाव जागृत उस समय नहीं होता जिस समय वो खाता है, और होना चाहिए, ये होना चाहिए। अंतरंग से पीड़ा होना चाहिए कि मेरा बच्चा नरक जा रहा है और मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। मैं कैसे हूँ? मैं शिक्षा दे सकता हूँ, इसका छुड़ा सकता हूँ, बंधन लगा सकता हूँ। मैं अपने घरों में ये शुद्ध चीज़ें बना करके इसको खिला सकता हूँ, और गोदी में बिठा कर मैं जैसे स्वर्ग जा रहा हूँ वैसे मेरे बच्चों को भी मैं स्वर्ग ले जा सकता हूँ, ऐसा विचार क्यों नहीं आता? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। तो आइए आप लोगों के लिए एक रास्ता बता देते हैं, इन बाजार की वस्तुओं से बचने के लिए या तो आप शुद्ध इन्हीं वस्तुओं को शुद्ध तरीके से शाकाहार तरीके से बनाएं घर में, और महिलाएं जो को हर रसोई घर की वो वैज्ञानिक विज्ञानी कहलाती है ना, तो इन विज्ञानियों को ये आविष्कार करना चाहिए कौन सी चीज़ कैसे सुंदर बनाया जा सकता है, स्वादिष्ट बनाया जा सकता है। और शाकाहार की ये वस्तुएं घर घर में बनने लग जाएं तो अपने संतान क्या नरक जा सकेगी? आप संतान को तो नरक पहुंचा रहे हैं और आप इनको त्याग करके किए हैं क्या मालूम नहीं, दोनों जा रहे हैं कि एक स्वर्ग जा रहा है और एक नरक जा रहा है कोई मालूम नहीं। हो सकता है माता पिता भी खाते हों और बच्चे को गोद में रख करके उन चीज़ों को खिलाते हों और दोनों ही नरक की टिकट खरीदते हों, ये भी हो सकता है ना। लेकिन ये रास्ता तो बदलना पड़ेगा, तभी आप एक आदर्श मानव कहलाएंगे, मानवीय जीवन जीने वाले कहलाएंगे। इस मानवीय जीवन जीने के लिए तीन मकारों का त्याग अवश्य बताया है करने के लिए। ये आठ मूल गुण मानवीय धर्म है, और सम्यक तो एक धर्मात्मा का धर्म है जो मानवीय धर्म को धारण किए बिना सम्यक दृष्टि नहीं बन सकते। असली धर्मात्मा तो सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि को ही जैनत्व की उपलब्धि होती है। उपदेश ज्यादा हुआ, समय खिंच गया, 15 मिनट और हो गया, मैं पूर्ण करूं। आशा रखता हूं आप सब लोगों से, भावना रखता हूं और देखता हूं इस ओर कितना जल्दी आप कदम बढ़ाएंगे। जल्दी से जल्दी कोई आयोजन इसके संबंध में होना चाहिए, और पूरे पुणे में जितने शाकाहार प्रेमी हैं शुद्ध वस्तु खाएंगे, शाकाहार से रहेंगे और मानवीय धर्म को निभाएंगे। मानवीय धर्म निभाते निभाते ही आप सम्यक दृष्टि बन सकते हैं, धर्मात्मा बन सकते हैं। सम्यक उत्पन्न होने के पश्चात ही कोई तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकता है, पापवान जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं कर सकता। वह श्रेणिक राजा था, गलती किया था, उन्होंने क्या किया था, एक मुनि महाराज के ऊपर, एक मोक्ष मार्ग पर चलने वाले आत्मा का कल्याण करने वाले जगत का कल्याणकारी महात्मा के ऊपर सोचे समझे बिना अज्ञान अवस्था में उपसर्ग किया। कौन सा उपसर्ग किया? मरा हुआ सांप को ला करके उनके गले में लिपटा दिया और चला गया। देखते हैं कि यह महात्मा कितने सच कब तक रहते हैं यहाँ, इस उपसर्ग को सहन करते हुए, इस कष्ट को सहन करते हुए कब तक बैठे रहेंगे। देखने के लिए डाला और उसका फल क्या निकला, देखते समय इतने तीव्र कषाय थे, अनंतानुबंधी कषाय का इतना तीव्र उदय था। उन्होंने धर्म से बदला लेने के परिणाम किया, धर्मात्मा से बदला लेने का परिणाम किया, तो फल स्वरूप ये हुआ कि उसी वक्त उनको सातवें नरक के आयु का बंध हुआ। वो जाने वाला था सातवें नरक, परंतु आज कौन से नरक में है? पहले नरक। बहुत आयु माफ हो गई, बहुत दंड माफ हो गया, और वह प्रथम नरक में जाकर के आज 84,000 वर्ष की आयु है उनकी। कितनी आयु घट गई, 33 सागर की आयु कहाँ और 84,000 वर्ष कहाँ। 84,000 वर्ष की आयु जहाँ प्रथम नरक में होती है, वहां पर उस बिल में उनका जन्म हुआ है और यहां पर क्यों गया, एक अपराध करने के कारण कि धर्मात्मा उनके ऊपर उपसर्ग किया बिना समझे अज्ञानवश। तो कर्म किसी को छोड़ता थोड़ी है, अज्ञान से पाप करो तो भी बनता है, जानबूझ कर पाप करो तो भी बनता है, कर्म किसी को छोड़ता नहीं, कर्म माफ नहीं करता, जो करोगे वो पाओगे, करो सो पाओ, करो सो पाओ। धर्म क्षेत्र में भी कहते हैं करो सो पाओ, बोली लो सो पाओ, तो बोली के टाइम में भी बोलते हैं ना, हम जो करते हैं उसका बराबर फल मिलता है, कर्म किसी को माफ नहीं करता है, कर्म बड़ा ईमानदार होता है, जिसने जितना किया है उतना ही देता है फल, कम ज्यादा करके नहीं देता। ऐसे सैनिक राजा प्रथम नरक में आज गए और प्रथम नरक में इसलिए वह जानना पड़ा, नरक आयु कभी छूटती नहीं है, बंद होने के पश्चात छूटती नहीं है, कम तो हो सकती है लेकिन छूटती नहीं है। कम तो हुआ किस पर, किसके बल पर कम हुआ, सम्यक दर्शन धारण करने से, क्षायक क्षोक्षम सम्यक तो से क्षायक सम्यक दृष्टि बना, क्षायक सम्यक दृष्टि से फिर क्या बना, वह तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके तीर्थंकर बनने के भावी काल में इसी भरत क्षेत्र में प्रथम तीर्थंकर वही राजा श्रेणिक बनने वाला है जो भगवान महावीर का महावीर के धर्म के सभा में उत्तम श्रोता थे। पहली बार में बैठ करके उपदेश सुनते थे, जब भी प्रश्न करते थे भगवान के महावीर महावीर के दिव्य ध्वनि खिर ही जाते थे और उन्हीं के सानिध्य में बैठ करके तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया था। और क्या किया था, क्यों किया, सम्यक दृष्टि बन करके, सम्यक दृष्टि तो बना ही, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद उन्होंने निरंतर प्रवचन सुन के भगवान महावीर का निरंतर उपदेश सुन करके अपने परिणामों को सुधारा, उज्जवल किया, विशुद्धि बढ़ाई और उसी चरम विशुद्धि के बल पर तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके तीर्थंकर बनने की योग्यता तो जुटा ली, लेकिन नरक गति का बंद होने के बाद वो क्षमा करने वाला कहाँ है, गति का बंद किसी पर क्षमा नहीं करता, कुछ दंड माफ तो करता है और माफ किस पर होता है, सम्यक दर्शन धारण करने से माफ हुआ, तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया है इस वजह से भी कुछ माफ हुआ, तो माफ तो हो गया लेकिन नरक जाने से बच नहीं पाया। अब भावी काल में वहां से आकर ये तीर्थंकर बनेंगे, माता के 16 स्वप्न पड़ेंगे, गर्भावतरण अवतरण नहीं, अब अवतरण यानी ऊपर से नीचे आना ये अवतरण है और नरक से ऊपर आकर के तीर्थंकर कोई बन रहा है, गर्भ में आ रहा है जी, तो उसको क्या कहेंगे, गर्भावतरण। अवतरण यानी ऊपर से नीचे आना, गर्भ में आता है लेकिन नीचे से ऊपर आकर के अब गर्भ में आएगा। 16 स्वप्न माता को पढ़ेंगे और तीर्थंकर बन करके विश्व कल्याणकारी यही तत्व पुनः वे बताएंगे, अपना इतिहास भी स्वयं बताएंगे, मैं राजा था श्रेणी, ऐसा किया था, ऐसा हुआ, ऐसा गया और यहाँ पर आकर के पुनः मैं तीर्थंकर बना और विश्व कल्याण के लिए मैं भावना भाने के कारण से आज मैं यहाँ हूँ, आज तीर्थंकर हूँ, जैसा किया था वैसा पाया, बुरा भी किया तो बुरा पाया, अच्छा भी किया तो आज अच्छा बना। बंधुओं, सभी के पास वही योग्यता है जो योग्यता एक श्रेणिक राजा के पास थी, जो योग्यता एक भगवान महावीर के पास थी, जो योग्यता एक आदिनाथ भगवान के पास थी, वही योग्यता सबके पास पाई जाती है। अपने भव्यत्व को सदुपयोग करके इस संसार से मुक्त होने का हमें चिंतन करना चाहिए। चिंतन मनन के बिना जीवन का सुधार कभी नहीं हो सकता। जीवन अपना है तो चिंतन भी अपना होना चाहिए। धर्म एक स्वतंत्र वस्तु है और हमारा भौतिक जीवन भी एक स्वतंत्र वस्तु है। जरूरी नहीं है कि इसको पाप से व्यतीत किया जाए, जरूरी नहीं है कि इसको दुख से व्यतीत किया जाए। आप बदलेंगे तो जीवन बदलेगा, आप बदलेंगे तो भौतिक जीवन भी बदलेगा और परमार्थ जीवन भी बदलेगा। दोनों जीवन बदले और आपको भी आदिनाथ भगवान के समान निर्वाण की प्राप्ति हो, आप आत्मा से परमात्मा बने, इसी भावना के साथ अहिंसा परमो वाणी।
को धोती कतह कहाती जिन वाणी जय वन अपना हम विषयांदर
जिन वाणी।